पूछना करना हो तो जल्दी जल्दी पूछो। बाद में
शंकर ने बैल पर दिखाई देते हैं, शंकर ने बैल पर दिखाई देती है, शंकर है, शंकर है
बैल पर
सवारी
दिखाती है।
बैल पर क्या?
बैल, बैल के ऊपर शंकर को दिखाते हैं,
दिखाते हैं। शंकर है देवता, फरिश्ता, फरिश्ता स्वरूप। कैसा बैल पर सवारी करता है ये समझने की बात है, ये समझने की बात है। कैसा
एक तो शंकर ब्रह्मा और विष्णु को सूक्ष्म बतल में दिखाते हैं, कहते हैं सूक्ष्म बतलवासी है। तो प्रश्न पैदा होता है, जब सूक्ष्म बतलवासी है तो इस दुनिया में उनकी मूर्तियां कहां से आ गई? अगर सूक्ष्म बतल में ही उन्होंने काम किया है तो इस दुनिया में मूर्तियां कैसे बन गई, मंदिर कैसे बन गए? नेहरू जी की मूर्ति, गांधी जी की मूर्ति, कोई भी नेता की मूर्ति बनाई जाती है तो यादगार बनती है, जरूर उसने कोई काम किया होगा तभी तो बनती है। इस दुनिया में काम किया या ऊपर की दुनिया में काम किया? इस दुनिया में काम करके गए हैं तो उनकी मूर्ति बनी। तो पहली बात तो यही है कि सूक्ष्म बतलवासी नहीं होते लेकिन ज्ञान की सूक्ष्म स्टेज में टिके हुए होते हैं, साकारी देह की स्मृति में नहीं होते हैं। सूक्ष्म ज्ञान की स्टेज में टिकी हुई आत्माएं होती हैं, ऐसे नहीं कि उनको शरीर अपना नहीं होता है। अपना शरीर होते हुए भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज तक पहुंच जाते हैं, आकारी स्टेज में होते हैं पहले। तो आकारी स्टेज का मतलब ही है साकार स्टेज से परे। अगर सूक्ष्म बतन में होते तो सूक्ष्म बतन में बैल वगैरह कहां से आवेंगे? बैल तो जानवर होता है, जानवरों की सूक्ष्म स्टेज थोड़े ही बनती है। फरिश्ताई स्टेज मनुष्यों की बनेगी या जानवरों की बनेगी? मनुष्यों की बनती है। तो जो बैल दिखाया है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि बैल जैसा जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है उसके ऊपर सवार हो जाते हैं, उसे कंट्रोल कर लेते हैं, नाथ लेते हैं। तो नाम पड़ता है सोमनाथ, सोम माना चंद्रमा, चंद्रमा कहा जाता है ब्रह्मा को। ब्रह्मा बीज रूपी स्टेज में नहीं टिक सके, देहभान में रहे। क्या देहभान? मेरे में शिव प्रवेश करता है, मैं भगवान का साकार रूप हूं और दूसरा कोई भगवान का साकार रूप नहीं हो सकता। जबकि वास्तव में जैसे दुनिया में और गुरु होकर के गए हैं, अपना अपना ज्ञान सुना के चले गए, ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से भी ज्ञान तो सुनाया गया, लेकिन ज्ञान का तंत्र किसी की बुद्धि में नहीं बैठा। खुद ब्रह्मा की बुद्धि में भी ज्ञान की गहराई बैठी नहीं। अगर बैठी होती तो दुनिया में ये घोषणा नहीं कराते कि 76 में पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। इसलिए बैल बुद्धि कहा। जानवर की बुद्धि ज्ञान की गहराई को नहीं पकड़ सकती। देवान रहा जो भी धर्म पिताएं हैं वो सब निराकारी स्टेज में दिखाए जाते हैं। अपने अपने धर्म के पिता हैं, बीज रूप होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जैसा कि नाम है बड़ी मां, सृष्टि की बड़े से बड़ी माता है, माता साकारी होती है और बाप निराकार होता है। बाप निराकारी स्टेज में टिकने में सहज होता है, वो बीज होता है। गीता में भी कहा गया हम बीज प्रदपिता, मैं इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज डालने वाला बाप हूं। बीज किस में पड़ता है? धरणी में पड़ता है। बीज सूक्ष्म होता है या धरणी सूक्ष्म होती है? बीज सूक्ष्म होता है, धरणी साकार होती है। तो जो भी धरणी रूपी कन्याएं माताएं हैं, उन माताओं का पाठ बजाने वालों में सबसे बड़ी से बड़ी माता का पाठ बजाया ब्रह्मा ने। क्या पाठ बजाया? जो भी बच्चे थे इस सृष्टि के उन सब को प्यार दिया, दुलार दिया, पालना की, परवरिश की, उनसे सुख लेने की आशा नहीं की, उनको सुख दिया। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी पुराना ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दृष्टि मात्र से भी दुख दिया। तो माता का ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजा करके दिखाया, लेकिन माता अगर पिता की रहबरी में न हो तो बच्चे उस माता का सम्मान करेंगे? सतीपुत्रेता में तो विधवा होती नहीं है, माता विधवा कहां होती है? कौन से युग में? द्वापर कलयुग में विधवा बनती है। तो जो विधवा पने का जो दोष लगता है वो कैसे लगता है? अगर एक में ही वृत्ति लगी रहे तो अगले जन्म में विधवा बनेगी क्या? विधवा कब बनती है? जब पूर्व जन्म में या इस जन्म में पति का तिरस्कार किया हो, यज्ञ के आदि में जिस व्यक्ति के द्वारा ब्रह्मा को अपने साक्षात्कारों का ज्ञान हुआ, खुशी मिली कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं, ब्रह्मा के रूप में मुझे पार्ट बजाना है, सत्य में कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया खलास होने वाली है। जिसके द्वारा ज्ञान मिला है इस बात का, छह आठ वर्ष पूरे होते होते उसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया। इसलिए मुरली में बोला है, यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, निमित्त कौन बने? ब्रह्मा बाप। यज्ञ के आदमी जो माता थी वो ब्रह्मा, और वो बाप प्रजापिता जिसके द्वारा ज्ञान मिला, और ब्राह्मण बच्चे। ब्राह्मण बच्चों में मुख्य बच्चा कौन? दादा लेखराज। तो माता गई तो अपना टाइटल ब्रह्मा बच्चे को दे के गई, और ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। प्रजापिता भूल गया, क्या नाम पड़ा संस्था का? ओम मंडली से बदल करके ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। प्रजापिता क्यों भूल गया? प्रजापिता भूल गया, यही कमी आ गई बुद्धि की। मां के बगैर बच्चों की परवरिश बिना बाप के कैसे होगी? आज से ही वो बच्चे ब्रह्मा के लिए दुखदाई रहे और अंतिम समय तक दुखदाई रहे। सारी सत्ता ब्राह्मण बच्चों ने यज्ञ की अपनी मुट्ठी में ले ली, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना लिया अपने नाम। अब ब्रह्मा बाबा को पता ही नहीं चला, जैसे आज की माताएं होती है। पिता खुदान खास्ता शरीर छोड़ दे तो बच्चे आजकल क्या करते हैं? मां को पता ही नहीं पड़ता, सारी प्रॉपर्टी अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। तो ऐसे ही यज्ञ में हुआ, आखिरीन ब्रह्मा बाबा को हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेल हो गया, शरीर छूट गया और सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा। और सूक्ष्म शरीर से वो आत्मा अभी भी भटक रही। राम वाली आत्मा के संपर्क में आती है तो बीज रूप स्टेज बन जाती है। ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई पड़ती है, और जब पूर्वजन्म की स्मृति आती है तो वो कृष्ण बच्चा गुलजार दादी में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश करता है, वाणी चलाता है। अब चूंकि खूब गहरी याद में रह करके वाणी चलाता है, बिंदु की याद में रहकर, इसलिए जो भी वाणी चलती है उस वाणी की एक खासियत है कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं आता है जो मुरली के बरखिलाफ हो। माना ब्रह्मा के मुख से शिव ने जो जो बोला मुरली में, उस मुरली की खिलाफत करने वाला अव्यक्तवाणी में एक भी पॉइंट नहीं होता। ये याद का प्रताप है। बिंदु रूप की याद में रह करके वो अव्यक्तवाणी चलाई जाती है, लेकिन ब्रह्मा की सोल के द्वारा चलाई जाती है। ब्रह्मा की सोल भगवान नहीं है लेकिन देवता है, सतयुग का पहला पत्ता है। इसलिए वो पहला पत्ता ज्ञान की बातें सुनाएगा या देवता होने के कारण धारणा की बातें सुनाएगा? सी वाणी सुनाता है? धारणा की बातें सुनाता है। सारी अव्यक्त वाणी धारणा के पॉइंट से भरी पड़ी है, ज्ञान के पॉइंट्स नहीं है। धारणा देवताओं में होती है, देवात्मा है, लेकिन देवात्माओं में ज्ञान नहीं होता। देवात्माएं ज्ञान युक्त नहीं होती। जब देवताएं बनेंगे तो सारा ज्ञान भूल जाएंगे। तुम्हारे में और सतयुग के जन्म लेने वाले उन बच्चों में जो देवता के रूप में जन्म लेंगे उनमें ये अंतर होगा। तुम्हारे अंदर ज्ञान भी है और आगे चलकर के धारणा भी हो जाएगी। तो तुम बहुत ऊंच कुल के हो, ब्राह्मण है ऊंच और देवताएं उनके मुकाबले नीची कैटेगरी के। तो शंकर को बैल के ऊपर सवारी दिखाई जाती है। किस बात में कंट्रोल किया? वो बैल समझता है गीता का भगवान मैं हूं। इस सृष्टि पर अगर साकार में कोई गीता का भगवान हुआ, गीता ज्ञान सुनाने वाला हुआ, तो वो मैं हूं। 63 जन्मों से ये संस्कार पक्के होते आए कृष्ण वाली आत्मा के। कौन से संस्कार? कि गीता का भगवान कृष्ण है, गीता का भगवान और कोई मनुष्य मात्र नहीं हो सकता। तो ये बुद्धि में जो बात नहीं बैठ सकती है वो बात शंकर के द्वारा फिर बुद्धि में बैठाई जाती है। माने उसको नाक लिया जाता है, नकेल डाल दी जाती है, कंट्रोल कर लिया जाता है, सवारी कर ली जाती है। इसलिए मुरली में बोला है शिव शंकर में प्रवेश करते हैं, जानवर में प्रवेश करेंगे क्या? शिव मनुष्य में आवेंगे या जानवर में आवेंगे? जानवर तो मनन चिंतन मंथन करता ही नहीं। ब्रह्मा बाबा से ज्यादा मनन चिंतन मंथन सरस्वती ओम राधे का होता था। ब्रह्मा बाबा कोई प्रकार का मनन चिंतन मंथन नहीं कर पाते थे। तो मंथन बच्चा कैसे करेगा? टाइटल ही दे दिया है, ये ब्रह्मा है, बच्चा बुद्धि बेबी है, तो बेबी थोड़ी बुद्धि चलाता है। उसको तो जितना रटा दो उतना रट लेता है। तो ब्रह्मा की सोल जैसे बैल का पार्ट बन जाती है और शंकर कंट्रोल करता है बैल को। शंकर में शिव प्रवेश करता है और शंकर बैल के ऊपर सवारी करता है। ये है रहस्य। बाकी बैल पर न तो मनुष्य सवारी करते हैं, न कोई देवता सवारी करता है, न शिव ज्योति बिंदु को अपनी टांगे हैं जो उसके ऊपर सवारी करेगा। बैल के ऊपर सवारी करने के लिए तो टांगे चाहिए। शिव को अपनी टांगे हैं क्या? नहीं। इसलिए बताया रहस्य है क्या कि शिव बैल के ऊपर सवारी करते, वास्तव में शिव नहीं करते। भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया गया, क्योंकि शंकर की ही एक ऐसी आत्मा पुरुषार्थी है संसार में जो पुरुषार्थ करके शिव समान निराकारी स्टेज को पहले पहले धारण कर लेती है, इसलिए शिव का नाम शंकर के साथ मिला दिया है। कोई और देवता नहीं है जिसका नाम शंकर के साथ मिलाया हो। शिव ब्रह्मा नहीं कहेंगे, शिव विष्णु नहीं कहेंगे, शिव जगदम्बा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव शंकर भोलेनाथ। और
सूर्यवंशी है 4.5 लाख रुद्रमाला माना जन्म देने वाला। सचयुग में पहले आने वाले उनसे जन्म लेने वाले 4.5 लाख है। चंद्रवंशी जन्म लेने वाले चंद्रवंशी 4.5 लाख।
चंद्रवंशी थोड़े कहे जाएंगे, सूर्यवंशियों से जन्म लेने वाले सूर्यवंशी होंगे, चंद्रवंशी कैसे होंगे?
वो चंद्रवंशी,
अरे पूर्व जन्म में कहा जा सकता है कि पूर्व जन्म में ज्ञान चंद्रमा की रहवरी में जो पले हैं वो चंद्रवंशी हैं। इस्लाम वंशी हैं, बौद्ध वंशी हैं, क्रिश्चियन वंशी हैं, लेकिन जब जन्म ले लेंगे सतयुग में तो जिससे जन्म लेंगे उसके कुल के होंगे या दूसरे कुल के होंगे? बाप से जन्म बच्चा लेता है तो बाप के कुल का कहा जाता है या कोई पूर्व जन्म का दूसरा कुल का कहा जाता है? बाप का कुल का कहा जाता है।
वो है मेरा क्वेश्चन है।
अरे चंद्रवंशी नहीं होते हैं, सतयुग में सब होंगे सूर्यवंशी। जब सतयुग शुरू होगा, पहला पत्ता का जन्म हुआ और पहले पत्ते के बाद जो भी 4.5 लाख पत्तों का जन्म होगा वो सब सूर्यवंशी होंगे। 9 लाख की संख्या टोटल किसकी होगी? सूर्यवंशियों की होगी। और
संगमियों में संकल्प से सृष्टि होती है ना?
हाँ जी,
सत्यमी दृष्टि से सृष्टि होती है।
ठीक है,
दो बच्चे एक युगल पे।
हाँ जी,
त्रेता युग में कितने बच्चे पैदा होंगे, किसी विधि से पैदा होंगे?
सत्युग में श्रेष्ठ कुल जो होता है, जो ऊंचे तबके के माने जाते हैं, वो एक ही परिवार होता है। 8 डायनेस्टी सचिव में होंगी, लेकिन जो ऊंचे तबके का परिवार है वो लक्ष्मी नारायण का ही माना जाएगा। क्या लक्ष्मी नारायण एक ही है जो ऊंचे परिवार के है और बाकी सब प्रजा है? प्रजा की भी कैटेगरीज होती है, थोड़ी प्रजा होगी बड़े बड़े साहूकारों की फर्स्ट क्लास प्रजा, फिर कम साहूकारों की सेकंड क्लास प्रजा, फिर थर्ड क्लास प्रजा, और लास्ट में वो जो चांडाल वगैरह बनते हैं, दास दासी वगैरह बनते हैं, वो भी होंगे फोर्थ क्लास प्रजा। तो संख्या फोर्थ क्लास प्रजा की ज्यादा होगी या थर्ड क्लास की ज्यादा होगी या फर्स्ट क्लास प्रजा की ज्यादा संख्या होगी या लक्ष्मी नारायण का जो परिवार होगा उसकी संख्या ज्यादा होगी? जो फोर्थ क्लास प्रजा होगी उसकी संख्या बहुत होती है। तो ज्यादा ऊंचे ऊंचे जो परिवार होते हैं उनमें ज्यादा संतान की पैदाइश होती है, या जो नीचे तबके के होते हैं उनमें ज्यादा संतान की पैदाइश होती है? इसलिए सचिव में भी जो नीची कैटेगरी की प्रजा है उसमें दो दो बार बच्चों की पैदाइश भी होगी। क्या जो लक्ष्मी नारायण का परिवार है उसमें दो से दो ही जन्म लेते रहेंगे? जो संगम की लक्ष्मी नारायण है उनसे सचिवी राधा कृष्ण का जन्म होगा, सचिवी राधा कृष्ण से फिर इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा, लक्ष्मी नारायण इस्लाम धर्म वाले से जन्म होगा किसका? बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाली लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा। ऐसे ऐसे दो से दो ही पैदा होंगे, लेकिन फिर जो उनसे नीची कैटेगरी वाले होंगे, साहूकार प्रजा, फर्स्ट क्लास साहूकार, फर्स्ट क्लास प्रजा, उनमें कोई कोई के दो नहीं चार भी पैदा होंगे। हाँ जी। और जो सेकंड क्लास प्रजा होगी, छह नहीं, उनमें ज्यादातर को दो बार इशू होंगे। और थर्ड क्लास प्रजा होगी, उसमें और ज्यादा पैदाइश होगी, दो बार बहुत होंगे जिनको, दो दो बार। और फोर्थ क्लास प्रजा, उनमें सभी को दो दो बार जन्म होंगे।
ऐसा होते भी दो कारण होती है,
नहीं तो संख्या कैसे बढ़ेगी? 9 लाख से बढ़कर के 2 करोड़ संख्या कैसे होगी? अगर 9 लाख से 9 लाख ही जन्म लेते रहेंगे, सत्युग के पहले जन्म में 4.5 लाख से कितनों ने जन्म लिया? 4.5 लाख, और फिर उन्होंने 4.5 लाख को जन्म दिया, फिर उन्होंने 4.5 लाख को, तो संख्या कैसे बढ़ेगी? जनसंख्या नहीं बढ़ेगी ना, इसलिए हिसाब बना हुआ है। तो त्रेता युग की तो बात ही नहीं, त्रेता युग में तो जनसंख्या और ही 5 गुनी हो जाएगी, 4-5 गुनी जनसंख्या हो जाएगी सतयुग के मुकाबले। और वहां जनसंख्या बढ़ने की जो रेशो है वो कम हो जाएगी त्रेता में, सतयुग में जनसंख्या जास्ती बढ़ती है 8 जन्मों में। 8 जन्मों में 9 लाख की जगह कितने हो जाएंगे? 2 करोड़, माने कितना गुने हो गए? जनसंख्या कितना गुना बढ़ गई? 20 गुना बढ़ गई। सतयुग के अंत तक जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 1250 वर्ष में 20 गुने से भी ज्यादा। और त्रेता युग में, त्रेता युग में 2 करोड़ से बढ़कर के 8 या 10 करोड़ ही होगी, तो सिर्फ 5 गुनी बढ़ी, तो चौथाई ही तो ज्यादा, वो चौथाई ही रह गई जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ने का रेशो जो है वो चौथाई रह जाएगा। ऐसा क्यों होता कि सतयुग में जनसंख्या कम ज्यादा बढ़ती और त्रेता में जनसंख्या कम बढ़ती है? क्या कारण होता है? कारण ये होता है कि सतयुग में तो 8 जन्मों में 8 दुनी 16 ही प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स बनने वालों की संख्या कितनी होगी? 16 है, माना राज परिवार के सिर्फ 16 आत्माएं हैं जो राज परिवार की बनती हैं। और त्रेता में वो आबादी बढ़कर कितनी हो जाएगी? 16,100। इतने सब प्रिंस प्रिंसेस का परिवार होगा, राज परिवार होगा इतना बड़ा। तो राज परिवार में पैदाइश ज्यादा होगी या कम होगी? राज परिवार में पैदाइश ज्यादा होगी,
सतयुग से मुकाबले, सतयुग से मुकाबले
ज्यादा पैदाइश होगी, त्रेता युग में ज्यादा पैदाइश होगी। राज परिवार में ज्यादा पैदाइश होती है, प्रजा में कम होती है?
प्रजा में और ज्यादा है, सतयुग में 2-2 बच्चे राज परिवार में 16 होगी ना, 8 नारायण के मुकाबले।
जहाँ राज परिवार ज्यादा होता है वहाँ जनसंख्या कम बढ़ती है, और जहाँ राज परिवार कम है और प्रजा परिवार ज्यादा है तो जनसंख्या ज्यादा तेजी से ज्यादा बढ़ती है, रेशो बढ़ने का ज्यादा होता है। इसलिए त्रेता में 5 गुनी या 4 गुनी ही जनसंख्या बढ़ेगी, जबकि सत्ययुग में 20 गुनी जनसंख्या बढ़ गई 8 जन्मों में।
बाबा का तेलुगु कैसे कहते हैं ना, सीडी का कैसे, तो शहर में सभी टीवी में आने के लगा सकते हैं बाबा देखने के लिए।
जो भी जनरल नॉलेज की कैसेट्स हैं, जनरल नॉलेज वाली, जनरल पब्लिक के लिए, वो केबिल में भले डलवाइए।
वो ये कुछ दो है ना बाबा,
उससे सेवा होगी। जनरल पब्लिक की सीढ़ियाँ 20-25 तक होंगी। हाँ जी, वो नंबर वहाँ से हेड ऑफिस से मंगवा लो, वो सीढ़ियाँ केबिल में डलवा सकते हैं, उससे सर्विस होगी। अगर दूसरी डलवाएंगे तो डिससर्विस हो सकती है।
बाबा एडवांस पार्टी में क्या बोलकर पूछ रहे हैं वो माता जी?
एडवांस पार्टी जो ज्ञान में एडवांस जाए, आगे आगे जाए, एडवांस पार्टी जो धारणा में आगे आगे जाए, कितनी आगे जाती है? धारणा में कैसे आगे जाती है कि जो भी बेसिक वाले बच्चे हैं, जो बेसिक तक सीमित रहेंगे, एडवांस ज्ञान नहीं लेंगे, वो सतयुग में जाके बच्चे बनेंगे। क्या बच्चे बनेंगे? और दृष्टि से पैदाइश करेंगे, दृष्टि में उनका देहभान रहेगा, माने देहभान से पूरा परे नहीं जा पाएंगे। क्या जो बेसिक में है इस समय, एडवांस में नहीं आए और एडवांस में नहीं आवेंगे, तो उनको राधा कृष्ण जैसे बच्चों की तरह जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म देने के लिए भी वो दृष्टि के ऊपर आधारित रहेंगे, ये आंख तक देवभान रहेगा। और जो उनको जन्म देने वाले हैं माँ बाप, वो आंख में भी उनका देवभान नहीं रहेगा, वो सिर्फ बुद्धि की जो वृत्ति है, वाइब्रेशन, स्मृति, उसकी पावर से बच्चों की पैदाइश करेंगे। तो कितने धारणावान हुए, तो धारणा में भी आगे जाते हैं एडवांस में, ज्ञान में भी एडवांस में आगे जाते हैं, सेवा में भी एडवांस जाते हैं। क्या नई दुनिया की स्थापना बेसिक वाले नहीं कर सके, कौन करेंगे? एडवांस वाले करेंगे। सेवा में भी आगे जाते हैं और हो गई बात, और याद में भी तीखे जाते हैं। क्या वो इतने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी नहीं बन पाते, और ये निराकारी बनेंगे, निराकारी बनेंगे तो निर्विकारी भी बनेंगे, निरहंकारी भी बनेंगे। जो पांडवों का गायन है, ऊंची स्टेज में जाकर के देवान को गलाई दिया।
ప్రపంచమంతా వినాశనం అవుతారు కదా, అప్పుడు ప్రపంచం అంతా మొత్తం జనం నష్టం అయిపోతారా? ఏదో కొద్దిగా గొప్పగా ఉంటారు, జనం నష్టం,
ప్రపంచం వినాశనం అయినప్పుడు 4.5 లక్షలు కదా, 4.5 లక్షలు
వాళ్ళు పరందామని పోరా?
పరందామని పోతారు బాబా, ఏ మాతాజీ పూస్తా హై विनाश हो जाता है, उसमें कौन इधर बच जाता है?
आधे पापात्मा आधे पुण्यात्मा बचेंगे। आधे पुण्यात्मा बचेंगे, आधे पापात्मा बचेंगे।
माता जी पूछता है, अष्टदेव का मंदिर किधर बना है, वो बने है किसके लिए बने हैं?
देव का मंदिर सारी दुनिया के लिए बने हुए हैं, खास करके दक्षिण भारत में बनते हैं। दक्षिण भारत में अष्टदेवों के मंदिर भी हैं, मूर्तियां भी हैं। उत्तर भारत में अष्टदेवों की मूर्तियां नहीं बनती, मंदिर नहीं बनते, लेकिन पूजा फिर भी होती है। नवग्रह पूजन होता है, कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो पटली के ऊपर नवग्रह बनाते हैं और उनका पूजन करते हैं। मूर्ति नहीं बनाते
उत्तर भारत
नवग्रह अब पूज जो मूर्ति
अष्टदेव का पूज नहीं होता है यूपी में। अष्टदेव का पूज नहीं होती,
अष्टदेवताओं की अलग से मूर्तियां नहीं होती,
नवग्रह रूप में भी
मंदिर नहीं होते। नवग्रह के रूप में पूजन होता है लेकिन मूर्ति नहीं बनाई जाती, क्योंकि अष्ट देव जो है वो बीज रूपी स्टेज पूरी धारण कर लेते हैं तब वहां मान्यता होती है, पूजनीय होते हैं, लेकिन मूर्ति और मंदिर नहीं बनाए जाते। दक्षिण भारत में मूर्तियां भी बनती हैं और मंदिर भी हैं।
अष्ट देव ने दक्षिण भारत वालों की ज्यादा सेवा की होगी
है? भक्ति के बारे में कुछ बताना पापा।
अरे कथा करें, आपको जो पूछना हो सो पूछिए।
रामायण में हनुमान वाली सुग्रीव ऐसे ऐसे नाम आते हैं, हनुमान को तो ढेर सारे भक्त होते हैं। अभी हनुमान का पाठ कौन बजाओ? ब्रह्मा को तो, ब्रह्मा तो तीन मूर्ति में एक है लेकिन उनका तो कोई भी भक्त नहीं है।
उनका कोई भक्त नहीं,
भक्ति मात्र।
हाँ, ब्रह्मा की तो बात ही नहीं, उनकी तो पूजा ही नहीं होती, मंदिर ही नहीं होते। हनुमान के तो मंदिर होते हैं, तो हनुमान के जो मंदिर होते हैं हनुमान किसको मानते हैं? राम को मानते हैं। राम को कंधे पर चढ़ा करके कितना उनकी सेवा करते हैं। अभी सेवा कौन कर रहा है? राम वाली आत्मा की सेवा करने वाला कौन है? ब्रह्मा की सोल जो है वो सबसे ज्यादा पार्ट बजा रही है सेवा करने का। जब से शरीर छोड़ा है तब से लेकर अब तक भी और
मतलब ये कुरुक्षेत्र का लक्ष्मण कौन है?
वो दिल्ली का भाई है, वो गंधर्व विवाह किया है। पहले बहुत अच्छा नाम आता था, अभी तो थोड़ा ठंडे पड़ गए।
वेद में किसके लिए लागू होता है? वेद में किसके लिए लागू होता है?
वेद में कोई लक्ष्य प्राप्त करने वाला होगा। हाँ जी,
1989 में 8 कन्याएं आए थे बाप से मिलने के लिए, तब बिजली जैसा चमका ऐसा हमने पढ़ा।
मिलने के लिए नहीं आए, सरेंडर ही हो गए। मिलने के लिए नहीं आए सिर्फ, वो आए तो सरेंडर ही हो गए।
हाँ, ज्ञान सुनने के लिए आए,
ज्ञान सुना और ज्ञान सुनकर के सरेंडर ही हो गए।
फिर बिजली का घटना क्यों लिखे?
घटना इसलिए घटा कि एडवांस पार्टी में उससे पहले तो कोई संगठन नहीं था, अचानक जब 9 कन्याएं सरेंडर हो गई तो संगठन तो बन गया। इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं, कि बिन फेरे हम तेरे हो जाए, वो तो सिर्फ यज्ञ की आदि में ही हुआ था।
नहीं, वो स्थूल बिजली में जैसे
ब्रह्मा कुमारियों की बुद्धि में बिजली कौंध गई, ये क्या हुआ? वो समझते थे कि ब्रह्मा बाबा ही भगवान है, उनके पीछे ही गोपियां भागती हैं। तो बुद्धि में ठनाका हो गया।
फिर उस दिन को भी जन्माष्टमी कहा था ना?
नहीं नहीं, वो तो फाउंडेशन है। उस समय ब्रह्मा की सोल ने 100 साल पूरे किए, ब्रह्मा 100 साल की उम्र में थलास हो जाता है, ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में पूरी होती है। तो मृत्युलोक में 100 साल पूरे हो गए तो कहाँ रहेगा फिर वो आत्मा? कहाँ पहुँचती है? अमृतलोक। तो उसका पूरा हो गया तो फिर अमरलोक शुरू होता है। जो अमरलोक शुरू होता है वो फिर अमरनाथ के करीब पहुँचे, वहाँ पाठ बजाती है।
नौ कन्याएं, नौ देवी है।
नहीं ऐसा नहीं है, तो पुरुषार्थ के ऊपर है। जो पुरुषार्थ करेंगे वो पावेंगे। ये कोई थोड़े ही क्या है, जो जिस नंबर से आया ज्ञान में तो उसका नंबर बन गया।
उनको जगदा गोपा पे हाथ कहते तो पूजाएं कहा गया?
इनको
नौ कन्याएं।
ये किसने कहा? कहा कि नौ कन्याएं जगदम्बा की भुजाएं है और बाकी जो सरेंडर हुई वो कन्याएं जगदम्बा की भुजाएं नहीं है। कोई सर्विसेबल ज्यादा है तो भुजा है, कोई सर्विस नहीं करती है और ही ज्यादा डिसर्विस करती है तो भुजा कैसे हो जाएगी?
नहीं, जगदम्बा के आत्मा है ना, उन कन्याओं में प्रवेश करके सेवा करवाते हैं।
अरे प्रवेश करने की तो बात पहले होगी कि बाद में होगी, जब संपन्न स्टेज बनेगी जगदम्बा और जगत पिता की? जगदम्बा और जगत पिता जब संपन्न स्टेज वाले बन जाएं तब प्रवेश करेंगे या पहले ही प्रवेश कर जाएंगे? ब्रह्मा की सोल इस समय प्रवेश करती है, मम्मा की सोल प्रवेश करती है इंस्पिरेटिंग पार्टी के रूप में। मम्मा के लिए बोला है कि नौ देवियों का पार्ट एक ही देवी बजाती है। इंस्पिरेट किया उन नौ कन्याओं को, आगे बढ़ो, इनका अहंकार तोड़ो। तो एडवांस पार्टी में वो धक से नौ कन्याएं निकल पड़ी 89-90 में। बाकी हो जाए तो जो ज्यादा सर्विस करेंगे, जिनकी सर्विस ज्यादा साबित हो जाएगी वो हो जाए साबित हो जाएंगी।
तमिलनाडु में मिनी मंदिर कब आएंगे?
तमिलनाडु में किसने मना किया?
इसका क्या है? हम सब क्या करना है इसके?
क्या करना?
दिल्ली एक बनना है,
चंदा इकट्ठा करना है। हाँ पक्का कर लिया? बाबा ने तो अभी क्या बोला था मुरली में है, चंदा इकट्ठा नहीं करना है? यहाँ चंदा आदि इकट्ठी करने की बात ही नहीं है, तो भक्ति मार्ग इकट्ठा होता है, चंदा भी तो भीख मांगना होता है।
बाबा माया और माया बेटी अलग अलग है क्या?
अरे जो माया है वही माया बेटी है। माया के 5 रूप हैं, प्रकृति के भी 5 रूप हैं, दोनों मिलकर के रावण के रूप बनते हैं, 5 स्त्री के रूप, 5 माया रावण के रूप, 10 सिर मिलकर के रावण का स्वरूप बन जाता है 10 आनंद।
बाबा याद और
निशंकर स्टेज मैं कौन सा श्रेष्ठ?
याद कई प्रकार की होती है, काम करते करते याद करते हैं, आधी काम में बुद्धि जाती है, साकारी बुद्धि बनती है, आधी बाबा की याद आती है। दूसरी स्टेज वो है जिसमें मनन चिंतन मंथन चलता है, नई दुनिया के संकल्प चलते हैं, प्लानिंग चलती है, ज्ञान के संकल्प चलते हैं, सर्विस के संकल्प चलते हैं, वो फिर दूसरे नंबर की याद है, क्योंकि उसमें भी बाबा की बातें ही याद रहती हैं।
याद है।
तीसरी वो स्थिति है जिसमें न साकारी स्टेज होती है न आकारी स्टेज होती है मन चिंतन मंथन की, सिर्फ बिंदु, मैं आत्मा बिंदु और मेरा बाप निराकारी स्टेज वाला ज्योति बिंदु, बस और कुछ याद नहीं। उसको कहेंगे पावरफुल याद, आप व्यभिचारी याद, उसमें फिर विकर्म पक्के पक्के विनाश होते हैं, तीव्र अग्नि है।
जब याद अच्छे से मतलब जैसे निसंकल्प स्टेज हो जाती है उस टाइम जैसे जो आनंद मिलती है क्या उसको अतीन्द्रिय सुख कहते
हैं? नहीं, अतीन्द्रिय सुख अंत समय का गायन है।
कैसे होगा?
अंत समय तब होगा जब तीनों मूर्तियां इकट्ठी हो जाए। अभी ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान पूरा प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए।
प्रैक्टिकल ज्ञान कब आएगा?
प्रैक्टिकल ज्ञान जब प्रैक्टिकल पार्ट आएगा। अभी तो सब बोल बोल का पार्ट चल रहा है, हम भी बोलते हैं, तुम भी बोलते हो, वो भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, बोल बोल चल रहा है। बाकी विकारों पर विजय किसी ने पाके दिखाई है? तो प्रैक्टिकल ज्ञान कहाँ हुआ? ज्ञान का रिजल्ट तो जो होना चाहिए सो तो है नहीं। तो प्रैक्टिकल पार्टी निकलती है। वैष्णो देवी विजयमाला प्योरिटी से होता है प्रैक्टिकल। ये अंधे और लंगड़े की कहानी है, दोनों इकट्ठे हो जाए तो काम बन जाए। विजयमाला है अंधों की और रुद्रमाला है लूले लंगड़ों की। वो अज्ञान के अंधे हैं, रास्ता ही नहीं दिखाई पड़ता, जो जिसने जैसा कह दिया। गवर्नमेंट के लोगों को देख लिया कि प्रभात फेरी निकालते हैं तो प्रभात फेरी निकालना शुरू कर दिया, देख लिया कि प्रदर्शनी लगी हुई है दिल्ली की प्रगति मैदान में तो प्रदर्शनी लगाना शुरू कर दिया, दुनिया के गुरुओं को देख लिया योग शिविर लगा रहे हैं तो योग शिविर लगाना शुरू कर दिया, बड़े बड़े मेले लगा रहे हैं तो मेले लगाना शुरू कर दिया, मेगा प्रोग्राम शुरू कर दिए। जैसा जैसा देखते जाते हैं भक्ति मार्ग वैसा वैसा करते जाते हैं। देखा कि अडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे हैं तो रथ यात्रा निकालना शुरू कर दी। भटक रहे हैं वो है अंधे और इधर है लंगड़े। जितनी तीव्रता से पुरुषार्थ में चलना चाहिए उतनी तीव्रता से दौड़ नहीं लगा पाते। लगाना भी चाहे तो माया टांग पकड़ के नीचे गिरा देती।
लेकिन बाबा अभी तक द्वापर कल का शूटिंग हो रहा है क्यों? अभी तो व्यभिचार याद हो रही है।
याद हो रही?
हाँ, अभी व्यभिचारी का याद नहीं हो रही है ना।
हाँ,
जब याद में बैठते
हैं अभिचारी याद अच्छे संग से होगी या कुसंग से होगी?
अच्छे संग से।
फिर
लेकिन
पवित्र आत्माओं का संग हो रहा है?
नहीं।
फिर और
कृष्णा जन्म होने का बाद क्रिमिनल ड्राइव लेता है।
18 19
कृष्णा जन्म होने का बाद
18 19 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
क्रिमिनल क्रिमिनल आई रहती है या नहीं रहती है?
हाँ, क्रिमिनल आई रहते हैं।
वो तो कृष्ण का जन्म जिस परिवार में होगा वो परिवार छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा परिवार होगा। तो जिस परिवार में जन्म होगा वो उस परिवार के भातियों की क्रिमिनल लाई नहीं रहेगी। बाकी जो दुनिया है बाहर की दुनिया वो उनकी तो क्रिमिनल लाई रहेगी ना। जो पवित्र बनते जाएंगे विजयमाला में ऐड होते जाएंगे उनकी ही तो सिविल लाई बनेगी, फिर सारी दुनिया की बन जाएगी। जो पवित्र बनते जाएंगे उनके लिए वैकुंठ बन जाएगा। वैकुंठ का राज्य उनके लिए है जो पवित्र बने। बाबा तो कहते ही है एक हाथ से दो और एक हाथ से दो।
कृष्ण जन्म होने के टाइम में हाँ। बाहर का आदमी रहता क्या?
नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, सैंपल भी दिखा दिया यज्ञ के आदि में। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में खून की नदियां बह रही थी और वहीं पर सागर के कंठे पर एक बंगले में 300-400 बड़े आराम से रह पड़े थे। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा देखने को मिला ना, तो ये अंत में नहीं हो सकता क्या? अंत में तो और ही संपन्नता की स्टेज होगी, सब की नहीं होगी, कुछ विशेष आत्माएं होंगी जिनकी ये स्टेज बनेगी और वो वैकुंठ का नजारा वहां देखेंगी, उनकी क्रिमिनल लाई नहीं होगी। बाकी की तो दुनिया में क्रिमिनल लाई रहेगी, वो चाहे ज्ञान में चलने वाले हो चाहे अज्ञानी हो। जब तक विजयमाला में ऐड नहीं होंगे तब तक क्रिमिनल आई बनी रहेगी। भले तपस्या करते रहे, कोई कोई तो ऐसे आएंगे 2035-36 तक भी क्रिमिनल आई बने रहेंगे। तपस्या भी करते रहेंगे
विकर्म विनाश नहीं होगा ना?
क्रिमिनल लाइन बनेगी तो विकर्म विनाश होंगे, विकर्म बनेंगे,
विकर्म हो रहे ना। फिर उनका पाप कर्म कैसे भस्म
होगा? कैसे कैसे क्या बात होगा? तो याद से ही और ठोकरे खाएंगे। दुनिया में ठोकरे बढ़ेगी या घटेंगी? जब विनाश होगा चारों तरफ तो हाहाकार बढ़ेगा या घटेगा? दर बदर ज्यादा हौसले होते जाएंगे या रोटी और कपड़ा और मकान बड़े आराम से मिलता जाएगा? अभी तो बड़े आराम से मिल रहा है।
बाबा थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास जैसे प्रजा कैटेगरी होते हैं उनका सबका 84 जन्म का रेट चलेगा?
तो 4.5 लाख के अंदर होंगे वो, चाहे प्रजावर्ग के हों चाहे राज्य अधिकारी हों और चाहे राजा बनने वाले हो।
लेकिन वो तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे फिर कैसे उनका रेल खुलेगा?
पुरुषार्थ नहीं करेंगे लेकिन सच्चे तो होंगे, सच्चे दिल पर साहब राजी।
पीबी के 84 जनों का रेल खुलता, बीके का
उसका आत्मा
पीवी के कहने से पीवी के नहीं हो जाता है, ऐसे प्रैक्टिकल में बन के दिखाए जो मुरली में बोला हुआ है। प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे बन करके दिखाए प्रैक्टिकल में, कुछ करके दिखाए।
बीके
तो उन्होंने बाप को ही नहीं पहचाना, वो तो यही ब्रह्मा कुमार अम्मा के कुमार, उन्हें वर्षा मिलेगा क्या? अम्मा के बच्चों को वर्षा मिलता है क्या है? जो कहेंगे कि हम अम्मा के बच्चे हैं, बाप की उन्हें पता ही नहीं है, तो बाप को इतना निग्लेक्ट करते हैं तो फिर उनको वर्षा मिलेगा? वो इस जन्म में वर्षा मिलेगा, जो पहचानेंगे मानेंगे चलेंगे उनको वर्षा मिलेगा, वो 4.5 लाख निकलेंगे।
और 2035 तक याद में जो क्रिमिनलाइज बन के रहेंगे बताया ना, उनके वो तपस्या में होंगे क्या?
अभी नहीं तपस्या कर रहे हैं।
नहीं, वहाँ परमधाम में तपस्या में होगा क्या?
ठीक है, तो संगठन में भी तपस्या करेंगे।
अच्छा, तपस्या करने समय उनके साथ
तपस्या करने से स्थिति कुछ अच्छी बन जाएगी?
तपस्या करने समय उनके साथ बाप होगा क्या?
बाप तो सभी के साथ, जो भी पते थे सब पत्तों के साथ बाप तो है ही है।
तो बाप 2018 में भी 18 में ही लक्ष्मी नारायण बन के जन्म देता है ना?
कृष्ण का चित्र भूल गए?
2018 में बन के जन्म,
लक्ष्मी नारायण का चित्र भूल गए? लक्ष्मीनारायण का चित्र याद है? लक्ष्मीनारायण के चित्र में और राधा कृष्ण के चित्र में क्या फर्क है? जो लक्ष्मीनारायण का चित्र बना हुआ है और उसके नीचे राधा कृष्ण दिखाए गए हैं, उन दोनों में क्या फर्क है?
ये दृष्टि से,
हाँ, वो दृष्टि से सुख लेते हैं और वो दृष्टि मात्र का भी सुख नहीं लेते क्या? दृष्टि तो बहुत सूक्ष्म है शरीर की इंद्रियों में, उसका भी सुख नहीं लेते, सिर्फ वाइब्रेशन का सुख लेते हैं। तो शरीर के साथ होना जरूरी है क्या? राधा कृष्ण जैसे बच्चों को पैदा करने के लिए शरीर के साथ रहना लक्ष्मी नारायण का जरूरी है क्या? है? अरे हाँ ना, तो करो नहीं, जब उनका साथ रहना ही जरूरी नहीं है तो फिर बैकुंठ में जाने की बात क्या हो गई?
तो बाप
जन्म पर जिम्मेवारी जन्म देंगे,
देने के बाद भी बाप के पास वहाँ होगा।
बाप बच्चों को साथ लेकर के जाएगा,
तपस्या
बीच में छोड़ जाएगा?
तपस्या करने वाले का सब होगा ना?
जिम्मेवारी बाप की होती है परिवार की, या माँ की परिवार की जिम्मेवारी होती है? जो जिम्मेवारी तो बाप की होती है ना, रचयिता तो बाप है ना, तो रचयिता के ऊपर जिम्मेवारी होती है। 500 करोड़ जो भी हैं उन सबको साथ लेकर के जाएगा, कोई को छोड़ के जाने वाला नहीं है, तो खुद जाके स्वर्ग में बैठ जाए। ये क्या बात हुई?
तो 35 तक यहाँ होगा ना बाप?
यदि बाबा को
एक बात उनकी पूरी हो रही तो फिर पूछो,
35 तक शिव बाप यहाँ होगा ना इस दुनिया में?
36 तक भी होगा।
हाँ भाई, तो 500 करोड़ को साथ लेके जाएंगे बताया ना अभी?
35 तक होने का क्या सवाल? जब राधा कृष्ण को जन्म दे दिया तो बाप समान तो पहले ही बन गया, शिव बाप को सृष्टि पर रहने की क्या दरकार? जब राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होना शुरू हो गया फिर तो बाप समान शिव समान स्टेज तो बन गई ना किसी की?
हाँ,
शिव तो शिव शंकर मिला के ये कर दिया,
तो उसके बाद शिव का पाद यहाँ नहीं होगा, उसके पाद कोई दूसरा ले लेगा ना शिव?
पाद क्यों नहीं, कोई कह सकता है कि शिव है या नहीं है जब एक्ट सारी है? बिंदी देखने में आती है क्या? और ही तीखा पाठ बजाएगी।
बाबा अंतमात्मा सौगति बोलते हैं,
तो विजय माला जब आएंगे वो तो उन लोग तो अभी बिंदु को याद करते हैं ना, फिर वो अभी बिंदु को याद करते हैं ना,
ठीक है,
तो इधर आने के बाद भी वही उनको भी वही याद रहेगा ना,
क्यों याद रहेगा, उनको ज्ञान नहीं मिलेगा,
मिलने के बाद प्रैक्टिस करना
पड़ेगा, उन्हें तो प्योरिटी की पावर और ज्यादा सीखे जाएंगे। जो मिट्टी का पात्र होता है वो उसमें ज्ञान मिट्टी के पात्र को फोड़ के निकल जाता है या सोने के पात्र को फोड़ के निकलता है, जिनकी बुद्धि में देह अभिमान की मिट्टी भरी हुई है वो उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं ठहरता है, न ठहरेगा, न दूसरों को सुना सकेंगे, न असर होगा। जो सोने का पात्र है बुद्धि वो तो ज्ञान तुरंत पकड़ेगा, दूसरों को सुनाएगा और फट से ढेर सारी आत्माएं निकलेंगी। बोल भी दिया, एक रानी मक्खी निकलती है तो उसके पीछे पीछे सारा ही झाड़ जाता है।
एक टाइम में पूरा सब आ जाएंगे या धीरे धीरे?
भले धीरे धीरे आएंगे, आएंगे तो झाड़ के झाड़।
महामारी महाभारत लड़ाई,
हाँ जी,
वो कब होगा?
जब स्थापना होगी तो महामारी महाभारत लड़ाई भी होगी। जब तक स्थापना नहीं हुई है तब तक लड़ाई भी नहीं छिड़ेगी।
महामारी महाभारत यहाँ जो कहा है वो तो भारतदारी के नाम के या के?
महामारी महाभारत का मतलब है भारत के ऊपर वो लड़ाई छिड़ती है, भारत उसका निमित्त बनता है।
महाभारी भारत है ना,
भारत वो सिर्फ जगह का नाम नहीं है, कोई चैतन्य व्यक्ति भी है।
ऐसे ही महाभारी भी कोई चैतन्य व्यक्ति होगा ना?
हाँ, जब भारी उसका पार्टी भारी है, इतना भारी बता दिया है कि राम सीता को खादी की राजा रानी कहेंगे, बरसाती दिनों में खादी भारी नहीं हो जाती है।
तो लड़ाई महाभारी महाभारत के अंदर होगा या पूरी दोनों के अंदर होगा कि पूरा दुनिया में?
अंदर कोई कचरा की सफाई अंदर से शुरू होती है बाहर से शुरू होती है?
शुरू तो अंदर से होता
है, तो अंदर से ही होगा। पहले अंदर से रिफायरमेंट्स आए फिर बाहर की दुनिया में आए, पहले अंदर वाले पिटे फिर बाहर वाले पिटे, पहले अंदर वाले सुधरे फिर बाहर वाले सुधरे। पहले अपना सुधार, फिर परिवार का सुधार, फिर मोहल्ले का सुधार, गांव का सुधार, फिर जनपद का सुधार, फिर राज्य का सुधार, फिर देश का सुधार, फिर दुनिया का सुधार। कथा करें आप जो पूछे सो बताएं। आप मिनी मदन बनाने के लिए क्या प्लान बना रहे? चंदा इकट्ठा करने का प्लान बना रहे?
चंदा नहीं बाबा,
फिर क्या करेंगे?
मेरी माँ भी अपना घर देना चाहते हैं।
मिनी मदन क्या एक घर देने से बन जाता है? सिद्ध गीता पाठशाला ढेर सारी खुली हुई है, कई गीता पाठशालाओं में मिनी मदन जैसा नक्शा भी है। भाई लोग आते हैं उनके अलग रहने का प्रबंध हो जाता है, बहनें आती हैं, माताएं आती हैं, उनके अलग रहने का प्रबंध हो जाता है, बड़े अच्छी तरीके से संभालते हैं। परिवार की कोई भी बातें आ जाते हैं उनके खाने पीने का पूरा प्रबंध रहता है। अनुभव भी करके जाते हैं कि यहाँ परिवार जैसी भाषणा आती है, फिर भी गीता पाठशाला का रूप है। मिनिमदन होगा तो फिर बड़ा रूप हो जाता है, ब्राडमदन तो और बड़ा रूप हो जाता है।
गीता माता बड़ी माँ की नहीं ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ की।
दो चीजें होती हैं, एक होता है शरीर और एक होती है आत्मा, जिसे भगवान कहा जाता है। तो भगवान में आत्मा कौन सी है और शरीर कौन है? हैं? जब भगवान कहा जाता है तो भगवान नाम का जो पार्टधारी है उसमें आत्मा कौन काम करती है और शरीरधारी कौन काम करता है? जल्दी बताओ, उनको बताने दो। है जल्दी बताओ, जो मालूम हो सो बता दो। ब्रह्मा बाबा शरीरधारी, हाँ, अशिव बाबा भगवान है, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। आपका तो एडवांस ज्ञान ही अभी अधूरा है। ब्रह्मा बाबा गीता का भगवान हो गया?
नहीं।
अरे अभी तो बता रहे हैं आप।
नहीं, शरीर
शरीर गीता का भगवान का है। अरे ब्रह्मा बाबा के द्वारा भगवान का पार्ट हुआ, स्वर्ग बना। भगवान आके क्या करके जाता है? स्वर्ग स्थापन करके जाता है। तो वो काम हुआ
नहीं।
तो फिर भगवान कैसे बता रहे हैं?
भगवान कुछ नहीं,
आप कह रहे हो कि ब्रह्मा बाबा का शरीर भगवान
बड़ी माँ कौन की दोनों?
आप पहले भगवान की बात, अम्मा की बात बाद में। पहले बाप की बात बताओ।
शिव बाबा
हाँ, शिव बाबा में आत्मा कौन सी है और शरीर कौन सा है? आपसे तो पूछा ही नहीं जा रहा, बाप तो प्रसिद्ध होता है।
शरीर
प्रजापिता का है और आत्मा
शिव
की है, तो ये भगवान हुआ ना रूप। तो ऐसे ही जब जगदम्बा कहा जाएगा तो मुरली में तो बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है क्या, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए कन्या माताओं की संभाल के लिए ओम राधे सरस्वती को निमित्त बनाया है। माने ओम राधे सरस्वती जो है वो जगदम्बा का रूप नहीं है और ब्रह्मा भी पुरुष तन है, इसलिए जगदम्बा का रूप नहीं है। इसलिए ब्रह्मा का पुरुष तन मंदिरों में पूजा नहीं जाता, मूर्ति नहीं बनती। तो ब्रह्मा की सोल जब कोई माता में प्रवेश करती है शरीर छोड़ने के बाद, तब वो जगदम्बा का रूप धारण करता है। जगदम्बा का रूप धारण करने वाला कौन है? कमला ने सहन शक्ति धारण की। सारी जगत की अम्मा में मुख्य गुण कौन सा होना चाहिए? सहन शक्ति। कमला ने सहन शक्ति धारण की।
पूजन वो माता ने पूजा लेता ब्रह्मा बाबा का पूजा लेता ना।
ब्रह्मा बाबा का पूजा लेता? क्या पूजा लेता?
गीता माता ब्रह्मा बाबा का पूजा लेता है।
ब्रह्मा बाबा का पूजा लेता ये क्या? माने ब्रह्मा की सोल ने सहन शक्ति का पार्ट बजा के दिखाया, जो माँ का मुख्य गुण है। तो माता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन हुई? ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा की सोल जगदम्बा में प्रवेश करती है, तो जगदम्बा का चोला हुआ शरीर और आत्मा हुई ब्रह्मा। क्योंकि मुरली में पहले ही बोल दिया है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। क्या हमारी जगदम्बा कौन है वास्तव में? कोई स्त्री चोला धारी व्यक्ति है या वास्तव में ये ब्रह्मा हमारी जगदम्बा है? ब्रह्मा जगदम्बा है। एक सशक्त पार्ट है वो बाप के साथ किसका है? बाप है राम। उसके बाद दुनिया की सशक्त आत्मा कौन है? ब्रह्मा की। सोए बच्चा, बच्चे में ज्यादा ताकत आती है या माता में ज्यादा ताकत आती है? बच्चे में ज्यादा ताकत आती है।
गीता माता,
गीता गीता माता तो माता है ना, बच्चे को जन्म देने वाली हुई ना। यज्ञ के आदि में गीता माता ने ब्रह्मा कृष्ण को जन्म दिया ना, तो माता हुई या बच्चा हुआ? माता हुई। तो माता में ज्यादा शक्ति होती है? बाप की सारी शक्ति माता में जाती है या बच्चे में जाती है?
बच्चे।
ज्यादा पावरफुल कौन बनता है जल्दी बताओ ना। अरे अरे, कोई बाप को बच्चा पैदा होता है उसको सारे वर्षे का हकदार बनाया जाता है, राज्य का हकदार बनाया जाता है, या माता को बनाया जाता है हकदार?
बच्चा।
बच्चे को बनाया, क्यों? बच्चे में सारी पावर चली जाती है माँ बाप दोनों की। ऐसे ही कृष्ण बच्चा है। राम के बाद दुनिया की सशक्त आत्मा कौन सी हुई? कृष्ण वाली आत्मा। राम और कृष्ण ये हीरो हीरोइन हो गए सचिन रूपी रंगमंच के। तो कृष्ण की सोल, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की सोल कोई माता चोलाधारी में प्रवेश करती है और प्रवेश करके वो जगदम्बा का पार्ट बजाती है। जैसे प्रजापिता के शरीर को कहेंगे डब्बा और उसमें हीरा है शिव, तो कहेंगे हीरो पार्टधारी। ऐसे ही जगदम्बा जो है वो शरीरधारी जो है वो है डब्बा, और उसमें प्रवेश होके पार्ट जो आत्मा बजा रही है वो है आत्मा। दोनों के मेल से जगदम्बा का पार्ट बनता है। वैसे भी यज्ञ में अच्छे से अच्छी पालना किसने की? जगदम्बा ने की या ब्रह्मा ने की? माँ का पार्ट किसने बजा के दिखाया? ब्रह्मा ने बजा के दिखाया। तो निग्लेक्ट कैसे किया जा सकता है?
अभी
स्वर्ग का नशा थोड़ा बताना।
स्वर्ग का नशा स्वस्थिति में जितने स्थित हो जाएंगे उतना नशा चढ़ेगा। स्वस्थिति में स्थित नहीं होंगे तो स्वर्ग का नशा काफूर हो जाएगा। स्व माना स्वर्ग,
कैसा
नहीं, स्वस्थिति में स्थित होने से स्वर्ग भासेगा और परिस्थितियों के वशीभूत हो जाने से नरक भासेगा। पर है शरीर, देह, देह का चिंतन, देह के पदार्थों का चिंतन, देह के संबंधियों का चिंतन, उससे नरक बनता है। स्व ज्योतिबिंदु आत्मा का चिंतन जितना रहेगा उतना स्वर्ग अनुभव होगा। सीधा साधा ज्ञान है। स्वर्ग स्थापन करने वाला है, स्व स्थिति में सदा रहने वाला कौन? वो स्वर्ग स्थापन करने वाला है। कौन है? हम बच्चे सदा स्व स्थिति में स्थित रहने वाले हैं। सदा स्व स्थिति में स्थित रहने वाला है शिव, तो वो स्वर्ग स्थापन करता है। हम बच्चे अभी हम 24 घंटे में अपने को चेक करें स्व स्थिति में कितने रहते हैं और देह की स्थिति में कितने रहते हैं। अगर स्व स्थिति में 2-4 घंटे रहते हैं और 20 घंटे देवान में रहते हैं तो हम नरक ज्यादा बना रहे हैं या स्वर्ग ज्यादा बना रहे हैं? नरक के रचयिता होंगे। भले बाप आया हुआ है, दुनिया को चिल्लाते हैं बाप आया हुआ है स्वर्ग बनाने के लिए आया हुआ, हम क्या कर रहे हैं?